बहुत शुक्रिया गीता बहन, आपने आमंत्रित किया है सेवा अर्थ। बाबा ने जीवन ही हम ब्राह्मणों को सेवा के लिए दिया है, तो मैं आज के इस सत्र में जुड़े हुए सभी लंदन के, स्टैनमोर के और अन्य स्थानों से जुड़े हुए भाई बहनों का दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। योगा, राजयोग कहो, हम लोग इंग्लिश में उसे योगा शब्द कह देते हैं, लेकिन राजयोग एक सही शब्द जो स्वयं परमात्मा ने आकर हम सबको सिखाया है, और इसकी महत्ता हमारे वेद शास्त्रों में भी वर्णित है। हम सब इसका सुंदर अनुभव भी कर रहे हैं कि कैसे योग ने हम सबके जीवन को परिवर्तित किया है, कैसे योग ने हमारे जीवन में खुशहाली लाई है, शांति लाई है, हमारे विघ्नों को नष्ट किया है। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जबकि बाबा अपनी मुरली में योग की महत्ता को अंडरलाइन नहीं करते। आज भी बाबा ने कहा कि योग की कमी है तो भूल होती है, यदि योग अच्छा है तो भूल नहीं होगी, कहीं अटके होंगे तो योग युक्त नहीं हो सकेंगे। और योग के लिए ही बाबा ने आते ही ये कहा, मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे वो जो 8 घंटे योग का दान करें सारे संसार को। तो बाबा हम सबको योगी बनाने आए हैं, योग ही हमें अब मनुष्य से देवत्व की ओर ले चलने का सुंदर साधन है, और इससे जितना ये सहज है राजयोग, उतना ही गुह्य भी है। जैसे जैसे हम योग के पथ पर आगे बढ़ते चलते हैं, अनुभव करते चलते हैं कि कितना गुह्य है, कितना सूक्ष्म है, हमें और कितना कुछ जानना है और कितना कुछ पाना है, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम बाबा से जुड़ सकते हैं, उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सृष्टि के गुह्यतम रहस्यों को समझ सकते हैं, और साथ ही स्वयं को भी जान पहचान और अपने दायित्वों का सुंदर निर्वहन कर सकते हैं। तो इस सूक्ष्मतम और गुह्यतम विद्या को आज उजागर करने के लिए हमारे सम्मुख आदरणीय सूर्य भाई जी, योगी राज के नाम से पूरा ब्राह्मण परिवार जिन्हें जानता है, जिनका जन्म ही योग से हुआ और अपने पूरे जीवन में जिन्होंने योग को सर्वोपरि स्थान दिया है, आदरणीय भ्राता जी का अभिनंदन करते हुए आप सभी की ओर से हम एक हाथ की ताली से आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने हम सबको आज मार्गदर्शन देने के लिए अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला है। तो प्रथमतः मैं आदरणीय भ्राता जी से निवेदन करूंगा कि भ्राता जी योग के सुंदर विषय पर अपने चंद शब्द हम सबके बीच रखें, पश्चात हम अपने प्रश्नोत्तरी सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। आदरणीय सूर्य भाई जी,
ओम शांति। योग युक्त जीवन, सुख शांति से भरा जीवन, संतोष से भरा जीवन, प्रेम से भरा जीवन है। ये जीवन सरल जीवन होता है। देखिए, योग कितना बड़ा है, इससे हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, ध्यान दें। योग बल से ये कलियुगी संसार देवताओं के संसार में बदल जाता है। कलियुगी संसार में जो दुख अशांति है, जो यहाँ आग लगी हुई है, वो योग अग्नि में सब जल कर शीतल हो जाती है। कितना बड़ा इफेक्ट है राजयोग का, इससे रजाई मिलती है देवलोक की, जन्म जन्म के लिए, और आत्मा पावन बन जाती है। लेकिन वर्तमान में हमें बहुत सुख मिलता है, इस सुख को हमें प्राप्त करना है। ये योग अतिंद्रिय सुख देने वाला, परमात्म सुख देने वाला है। ये जीवन को सरल, मन बुद्धि को बहुत पावरफुल बनाने वाला है। पीछे मुरली में आया था, तुम इस राजयोग से बहुत बलवान बन जाते हो, और बलवान ही तो राज करते हैं, तो वो हमें मास्टर ऑलमाइटी बना देते हैं, मोस्ट पावरफुल। इतने पावरफुल के कई जन्म हम राज करें, हमारी बैटरी इतनी फुल हो जाए आत्मा की कि वो डिस्चार्ज बहुत धीरे धीरे हो, तेजी से नहीं। तो ऐसे योग को हमें ठीक से पहचानना है, उसका बहुत अभ्यास करना है। पहले मैं दो शब्द आपके सामने रख रहा हूं, बाबा से यानी शिव बाबा से, भगवान से अपनापन, वो मेरा है, ये फीलिंग बढ़ती चले। जब वो मेरा है, दूसरी बात, तो उसका सब कुछ मेरा है। दूसरी बात है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, अधिकार की फीलिंग। इसमें बहुत ब्राह्मण कमजोर हैं, अभी समझ नहीं पा रहे हैं, अधिकार, भगवान पर भी अधिकार, उसकी शक्तियों पर भी, उसके ज्ञान के खजाने पर भी, उसके सर्व खजानों पर अधिकार। जो कुछ उसका है, जो कुछ उसके पास है, वो सब हमारा है। अगली बात है उसको ठीक से पहचानना, उसके स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करके, उसकी शक्तियां, उसकी प्योरिटी, उसकी शांति, उसके वाइब्रेशंस लेना, ये थोड़ा अभ्यास का विषय है। हम सभी जितना जितना अभ्यास करेंगे, योग सरल होता जाएगा। मैंने पीछे भी योग के चार पिलर आपको बताए होंगे, अलग अलग वो पिलर हैं, वो नहीं जो प्रदर्शनी के चित्रों में है, वो पिलर जी जो एक योगी को सफल योगी बना देते हैं, उसकी हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, जिसमें एक है स्वमान, न सुनाओ तो दोबारा सुन लेंगे, दूसरा है अशरीरीपन का अभ्यास और आत्मिक दृष्टि। बहुत सुंदर चीज है ये, इससे हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। और तीसरा पिलर है इसका बार बार किया जाने वाला अभ्यास। और चौथा पिलर आप बना लें, पांच स्वरूपों के अभ्यास, ये सब करते रहेंगे रोज। हालांकि ये चारों भी योग हैं, तीन तो इनमें योग हैं, स्वमान, अशरीरीपन, आत्मिक दृष्टि, पांच स्वरूपों का अभ्यास। लेकिन चौथी चीज जो मैंने कही, बार बार अभ्यास, वो परम आवश्यक है। कई लोगों को योग क्लियर भी है पर वो अभ्यास नहीं करते, तो कलयुग का प्रभाव आ जाता है, यानी व्यर्थ बढ़ जाता है जीवन में बहुत ज्यादा। और अगर व्यर्थ बढ़ गया तो हम योगी बन ही नहीं सकते। अगर हमारी दृष्टि अवगुणी रह गई तो हम योगी बन ही नहीं सकते। अगर योग के मार्ग पे चलने वाली आत्मा पर चिंतन की राह पर चल पड़ी, दूसरों को देखने में व्यस्त हो गई, तो योग समाप्त हुआ। एक योगी को सूक्ष्म अहम को छोड़ने का पूरा ध्यान देना चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं मैंपन, साथ में मेरापन भी, पर मैंपन। अभिमान योगी की पहचान नहीं है, योगी अभिमानी नहीं होते। इसलिए बाबा ने अपने अभ्यास में हमारी संपूर्णता के लिए निराकारी, निर्विकारी, हालांकि निर्विकारी में अहंकारी, अहंकार को छोड़ना भी आ गया, लेकिन फिर भी तीसरा शब्द अंडरलाइन करके दिया निरहंकारी, जिसकी एक विस्तृत परिभाषा है। तो हम सभी योग के मार्ग पर अग्रसर हों, शिव बाबा को, परमात्मा को अपने जीवन में जैसे समा लें। समाने का अर्थ है जैसे आपके परिवार में तीन लोग हों और चौथा भी आ जाए, बच्चा जन्म ले लिया, चौथा आ गया, आपके बच्चे की शादी हो गई, चौथी आ गई, वो जीवन का अंग बन जाती है ना। भगवान को भी अपने जीवन का प्रमुख अंग बना ले हम, वो तो बड़ा है, वो हमारा माता पिता है, हम उसके परिवार हैं। इस गुड फीलिंग में आ जाए, हम अब भगवान के परिवार में हैं, ईश्वरीय परिवार के मेंबर्स हैं, ये अपने में खुद योग हो गया। तो श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना ही योग युक्त होना है, ये अंडरलाइन करके याद रखेंगे। मैं एक दो स्मृतियां याद आपको ध्यान पे दिला दूं और आप बाकी को जान जाएंगे, जानते हैं। अगर हमें ये याद रहने लगे, ये 5000 वर्ष का खेल पूरा हुआ, अब सब कुछ छोड़कर घर चलने का समय आ गया है, ये भी योग युक्त स्थिति है। अगर हमें याद रहता है हम सतयुग में पवित्र निर्विकारी देवता थे, ये भी योग का एक हिस्सा है, ये स्मृतियां हैं। बाबा ने हमें याद दिलाया तुम देव कुल की महान आत्मा हो, याद दिलाया तुम बहुत सूक्ष्म हो, तुम्हें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तो जो कुछ उसने हमें याद दिलाया, देखिए ये बात न भक्ति में हुई, न गुरुओं से हुई, न शास्त्रों से हुई, स्मृति दिलाई आकर भगवान ने। उस स्मृति में रहना यानी उसे याद करना, ये योग हो जाता है। अगर सारा दिन हम ऐसा प्लान बना लें कि हम भिन्न भिन्न स्मृतियों में रहने लगे, ज्यादा नहीं, एक स्मृति रख लें रोज के लिए, 3 रख लें बस, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बहुतों के प्रश्न आए ही होंगे, हम उनको बाद में लेंगे कि व्यर्थ बहुत चलता है। लेकिन ऐसी स्मृति अगर हम बुद्धि में रख लेते हैं तो बुद्धि उसके रस में रहने लगती है, और व्यर्थ जो आत्मा को गिराता है, जो आत्मा के सुख को नष्ट करता है, जो मन को भटका कर उसे न जाने कहां कहां ले जाता है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा किया आप सबने, योगी बनना हम सबका लक्ष्य है, लक्ष्य को दृढ़ करेंगे। मुझे श्रेष्ठ योगी बनना है, योगी आत्माएं ही विजयी रतन बनते हैं और वो ही विश्व पर राज करते हैं। योगी आत्मा ही अपने को संभाल सकते हैं। अपने को संभालने का अर्थ होता है अपनी स्थिति को संभालना। योगी आत्माएं अपनी स्थिति को संभाल सकते हैं तो वो दूसरों को भी संभाल सकते हैं, वो संसार को संभालेंगे। जैसे बाबा उस दिन कह रहे थे, आपको याद है, खुश रहना और खुश करना, ये वही कर सकते हैं जो योग युक्त रहकर खुश रहते हैं, जो ज्ञान चिंतन से बहुत खुश रहते हैं, वही खुश कर सकते हैं दूसरों को। नहीं तो इस संसार में दूसरों को राजी करना सबसे कठिन चैलेंज है। तो हम ज्ञान का प्रयोग करके अपने मन को शांत, महान विचारों में, बहुत पावरफुल स्थिति में रखेंगे और तब हम अपने योग युक्त जीवन का सहज निर्माण कर सकेंगे। ये बहुत सुंदर बात होगी। और बाबा को योगी आत्माएं अति प्रिय होती हैं, केवल ज्ञानी नहीं, योगी आत्माएं बहुत प्रिय, वो तो जैसे उसके दिल में रहती हैं, उसकी छत्र छाया में रहती हैं। योगियों के साथ सदा ही भगवान रहते हैं, उनको मदद करते हैं, उनको टच करते हैं, उनको गाइड करते हैं, फिर वो संसार को गाइड करते हैं। तो चलें हम योग के मार्ग पर अपने को महान सफल योगी बनाने के लिए। हाँ रुपेश भाई,
रूप में आपने सारी बातें हम सबके सम्मुख बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया। कई प्रश्नों के मुझे लगता है उत्तर भी उसमें शामिल हो गए हैं, फिर भी मैं प्रश्न जरूर लूंगा ताकि आप सार रूप में उनको स्पष्ट कर दें, ताकि सबके मन में जो भाव है योग को लेकर के, कुछ नए भाई बहने भी जुड़े हैं, कुछ पुराने भी, तो सभी प्रकार के प्रश्न हैं, तो पहला प्रश्न है व्रता जी कि योग में क्या हमें केवल यही देखना है कि मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट और शिव बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइट हूं?
केवल ये देखना ही नहीं है, बहुत सहज रूप से सभी जान लें, हमारे पास मन और बुद्धि दो चीजें हैं। देखने का काम होता है बुद्धि के द्वारा, बुद्धि हमारी थर्ड आई ऑफ विजडम है, लेकिन मन जब तक श्रेष्ठ विचार नहीं करेगा तब तक योग का आनंद नहीं आएगा। जब आप अपने स्वरूप को देख रहे हैं, मैं आत्मा बहुत सूक्ष्म हूं, तो उसका चिंतन भी करें। जैसे मैंने पहला चिंतन दिया, मैं आत्मा बहुत सूक्ष्म, देखें अपने को इतने सूक्ष्म कि कोई उसे देख ना सके, और मोस्ट पावरफुल हूं, मुझ में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, मैं ओरिजिनली एब्सोल्युटली प्योर हूं, अपने से जैसे हम बात कर रहे हैं, और कोई आत्मा नहीं, मैं आत्मा इस देह में बैठी हूं, मैंने ऐसे अनेक देह लिए हैं और छोड़े हैं, कभी मेल रूप से कभी फीमेल रूप से, अब मैं इस शरीर में हूं। चिंतन परमात्मा शिव बाबा पर भी जब हम अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे, यानी उनके स्वरूप को देखेंगे, तो देखते रहें, वे भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म, लेकिन उनकी डिवाइन लाइट चारों ओर फैल रही है, जैसे कि सारा ब्रह्मलोक उनके इस दिव्य तेज से जगमगा रहा है। ऐसा संकल्प करके उनके स्वरूप पर बुद्धि लगाएंगे, साथ में उनके बारे में जो कुछ हम जानते हैं उसका चिंतन हो, वे सृष्टि के बीज हैं, करते रहें अभी अभी आप, वे हमारे परम पिता निराकार शिव बाबा सृष्टि के बीज, सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता के सागर हैं, उनका दिव्य तेज चारों ओर फैल रहा है, विज्ञान सूर्य हैं, सर्वशक्तिवान हैं, बस देखते रहें उन्हें, फिर फील करें उनकी वो एनर्जी मुझ पर पड़ रही है, तो देखेंगे भी चिंतन भी करेंगे तो योग परफेक्ट हो जाएगा। अगर केवल देखेंगे तो मन जल्दी इधर उधर भटक जाएगा, क्योंकि मन की यही गति हम सबको ख्याल में रखनी है, हमें मन को श्रेष्ठ विचार देने हैं तो मन स्थिर होता रहेगा।
कई बार राधा जी इस प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं, चिंतन भी करते हैं, इस प्रकार का दृश्य बनाने का अभ्यास भी करते हैं, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं होती, मन बार बार बाहर की ओर भागता है, और तीसरी बात होती है कि इसमें रस नहीं आ रहा होता, तो लगता है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
बहुत इम्पोर्टेंट है ये अभ्यास करना कि हमारा चित्त शांत हो, अब वो जबरदस्ती तो नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें अपनी सारी दिनचर्या पर, हमें अपने कर्मों पर, हमें अपने स्वभाव संस्कारों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मान लो किसी को क्रोध आ गया और वो ये अभ्यास करे फिर, तो बिल्कुल सूखा लगेगा, कोई सुख नहीं मिलेगा। किसी ने आज कोई सूक्ष्म गलती कर दी, किसी को दो बार बुरे शब्द बोल दिए, या किसी ने हमें बोला और हम पर उसका इफेक्ट आ गया, तो इस योग में कोई सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म स्वभाव संस्कार हमारा व्यवहार जितना सुंदर होगा, चित्त उतना ही शांत रहेगा। इसलिए हम कर्मों को योग अभ्यास से जोड़ लें, जो जितना श्रेष्ठ कर्म करते हैं उतने ही सफल योगी बनते हैं। और अगर क्रोध या अहंकार है या प्योरिटी में कमी है, या कोई ऐसा कर्म हो रहा है जिससे मन विचलित है, मन शांत ही नहीं है, सुखी नहीं है, इच्छाएं बहुत हैं, कर्मेंद्रियों के रस बहुत हैं, तब ये सुख नहीं मिलता।
तो क्या कहेंगे ब्रदर जी कि योग के माध्यम से ये सारी चीजें ठीक होंगी, हमारे कर्म सुधरेंगे, क्रोध जाएगा, अहम जाएगा, या फिर पहले हम अपने क्रोध को ठीक करें, अहम को छोड़ें, उसके बाद हमारा योग लगेगा, कहां से शुरुआत?
इन सब के लिए हमें शुरुआत करनी चाहिए ज्ञान के बल से। पहले है ज्ञान, ज्ञान से अपने जीवन की ऐसी सेटिंग करें जिसमें ये सब चीजें आ जाएं और हमारा चित शांत रहने लगे, मन की उलझने समाप्त हो जाएं, फिर हम योग करेंगे। लेकिन दोनों को हमें साथ साथ लेकर भी चलना है। हम ये नहीं कहेंगे 5 साल तक आप चित को शांत करो फिर योग करना, लेकिन सारे दिन में ही हम ज्ञान की कुछ बातों का प्रयोग करके, ड्रामा की कुछ पॉइंट्स को यूज करके, मूल्यों से कुछ सुख लेकर चित्त को ठीक करते चलें। हम जानते हैं वो एक दिन में शांत नहीं होता, किसी की नेचर बहुत अच्छी होती है चित्त जल्दी शांत हो जाता है, तो किसी की नेचर अच्छी नहीं होती, उखड़ी हुई होती है, कोई मोह माया में ज्यादा अटके हैं, कोई धन के लालच के पीछे ज्यादा भटक रहे हैं, किसी को एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं, बहुत सारी सूक्ष्म चीजें काम करती हैं, किसी का चित्त शुभ भावनाओं से भरा हुआ नहीं है, कोई पास्ट में जीते हैं, ये बहुत हो रहा आजकल संसार में। इसलिए इन सब को धीरे धीरे ठीक करते चले ज्ञान बल से, तो योगी बन जाएंगे।
मतलब ज्ञान और योग,
हाँ, इसलिए याद रखेंगे जो श्रेष्ठ ज्ञानी नहीं है वो सफल योगी भी नहीं बन सकते।
अगला प्रश्न आया है, योग करते समय हम क्या विजन बनाएं? इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिव बाबा को देखें या ब्रह्मा बाबा को देखें या दोनों को कंबाइंड देखें, क्या कहते हैं?
ये योग की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। हम भी जब बच्चे थे, छोटे थे, तो मैंने तो अव्यक्त बाबा से ही पूछा ये प्रश्न जो आपने मेरे से पूछा है, क्योंकि उन दिन अव्यक्त बाबा से मिलने का एक खुला मौका हमें रहता था, अच्छी बातचीत हम कर सकते थे, पूछ सकते थे। तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा ठीक से क्लियर नहीं होता, बाप दादा को याद करें, निराकार से बाबा को याद करें, सुख संवतन में करें या परम धाम में करें या यहीं करें? तो बाबा ने कहा ये सब अलग अलग स्थितियां हैं, सभी करो। तो हमें ये याद रखना है, परम धाम में मैं निराकार आत्मा निराकार से बाबा के साथ, सुख संवतन में मैं फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख, उनसे दृष्टि लें, रूरिहान करें, वरदान लें। इस संसार में रहते हुए चलते फिरते स्वमान में स्थित, आत्मिक स्वरूप में स्थित, तो भिन्न भिन्न जो ये अभ्यास हैं ये हमें सब कर लेने चाहिए, और सारे अभ्यास करने के बाद हमारा बीज रूप का अभ्यास बहुत सहज और लंबे समय तक हो सकता है। इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सब करें। जो भी बाबा मुरलियों में कहते हैं वो आप सब करें। मैं भी जो आपको कह रहा हूँ वो भी वही है जो बाबा ने मुरलियों में कहा है, हमें गाइड किया है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है।
कई बार योग बोरिंग लगने लगता है, नवीनता लाना भी चाहते हैं लेकिन नए विजन नहीं बना पाते, तो विजन्स को हम कैसे क्रिएट करें? कमेंट्री से योग करते हैं तो अच्छा होता है, अब खुद से करने बैठते हैं तो मन एकाग्र नहीं हो पाता, बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती।
शुरू में कमेंट्री से योग करना ही ज्यादा अच्छा होता है। और अगर आप संगठन में भी हैं, मान लो 10 लोग भी बैठे हैं, तो मैं बाबा का एक महावाक्य याद दिला दूं टीचर बहनों के लिए भी। बाबा ने कहा अगर पूरा संगठन, चाहे वो 10 हो, 50 हो, 100 या हजारों हो, एक ही स्थिति में बैठ जाए तो उससे जो वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे वो संसार का बहुत कल्याण करेंगे। और कमेंट्री का अर्थ यही होता है, मान लो 10 लोग बैठे हैं तो 10 के 10 एक ही अभ्यास करेंगे ना। मान लो कमेंटेटर बोल रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, तो सब उसमें स्थित होंगे, तो वाइब्रेशंस चारों ओर बहुत पावरफुल फैलेंगे, वातावरण एक पावरफुल क्रिएट हो जाएगा। तो दूसरी बात, आपको याद हो पिछली अव्यक्त मुरली में बाबा ने यही शब्द युद्ध किया था, भिन्न भिन्न तरह के अभ्यास सारा दिन करेंगे तो बोर नहीं होंगे योग में, क्योंकि ये बड़ी नेचुरल सी बात है। जैसे एक सा भोजन खा के मनुष्य बोर हो जाएगा, मन को भी एक सा अभ्यास होगा तो कहेगा छोड़ो इसे रोज वही वही, मन भी तो वैरायटी चाहता है। इसलिए हमने बहुत इस पे क्लासेज कराई हैं, यूट्यूब पे भी बहुत है, दो चार चीजें मैंने अभी भी सुनाई, कभी आप देखो बाबा ने भी सुनाई है, पिछले दिनों ही सुनाई है, मैं उनको रिपीट कर देता हूं। कभी कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर उसको सकास दो, याद आ जाएगा, आ गया होगा आपको मुरली की बात। कभी कल्प वृक्ष के ऊपर खड़े होकर उसको सकास दो, कभी ग्लोब के ऊपर बैठकर सारे संसार को सकास दो, बुद्धि बाबा से जोड़ो, उसकी किरणें लो, संसार में फैलाओ। कभी फरिश्ते स्वरूप द्वारा प्रकृति के मालिक बनकर प्रकृति को सकास दो, कभी अशरीरीपन का अभ्यास करो, कभी मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, बाबा ने जो हमें टाइटल दिए उनका अभ्यास करें, कभी हम देवता थे अपने पांच स्वरूपों का अभ्यास करें। ये सारे जो हमारे अभ्यास हैं, बस ये अच्छी तरह आज आप जान लें, इन सब को करना है तो योग मन को इतना आनंदित करेगा। आप इसका अनुभव करें, आपने किया है जरूर, उसको जरा रिवाइज करें, योग मन को इतना आनंदित कर देगा कि सारा दिन इसी में रहने का ख्याल रहेगा, इंपोर्टेंस बढ़ जाएगी। साथ में ये भी अनुभव होगा कि जब हम इस तरह योग अभ्यास करते हैं, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी अंडरलाइन कर लें और कहीं ऐसी जगह लिख के रख देना जहां रोज एक बार पढ़ लिया करें आप। जब हम योग युक्त होने के ये भिन्न भिन्न अभ्यास करेंगे तो याद रखना आपके सारे कार्य सहज सफल होंगे, कोई विघ्न नहीं आएगा। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, किसी ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपके रिलेशनशिप की बात है, पति पत्नी का, माँ बाप बच्चों का, सब स्वीट हो जाएंगे, कार्य निर्विघ्न चलेंगे। इसलिए बोर ना हो प्लान बना लें। मैं छोटा सा प्लान आपको दे रहा हूं, करना सबको होगा ही, बिना किए तो नहीं होगा कुछ। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप कर सकें और आपको उमंग आए, ये कोई थ्योरिटिकल बात नहीं है कि आपको मैं ऐसे ही कह रहा हूं या बाबा ऐसे ही कह देता है। बहुत दिन तक मैंने अपने घंटे घंटे का प्लान बनाया योग का, बहुत दिन तक अलग अलग कर्मों में अलग अलग अभ्यास का प्लान बनाया, छह छह मास किए ये सब, फिर आगे कंटिन्यू हुआ। बहुत समय तक स्वमान के अभ्यास के प्रोग्राम रख के सब जोड़ के चले, ऐसे नहीं वो कर रहे तो वो छूट गया। बहुत समय मैंने एक अभ्यास किया, रोज मुरली के समय मैं एक 3 पॉइंट प्लान अपना बना लिया करता था मुरली के आधार पे, एक योग का अभ्यास, एक स्वमान का अभ्यास और एक उस दिन की जो सबसे मन भावक पॉइंट में ली होती थी उसको मुझे याद करना हर घंटे में, मतलब 10-20 बार उसे याद कर लेना है। तो 3 पॉइंट प्लान बहुत सुंदर रहा। जब आप बहुत बिजी हो 1 पॉइंट प्लान बना लें, वीकेंड हो आप छुट्टी पर हो आप 4-5 पॉइंट रख लें सारे दिन के लिए, तो आप कभी बोर नहीं होंगे। लेकिन ये स्वयं की प्लानिंग स्वयं करनी है, ज्ञान आपके पास भरपूर है।
जी क्षमा चाहूंगा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अंकित जी, जो आपने अभी बहुत सारे अभ्यास बताए हैं उनमें से हम अलग अलग अभ्यासों को सारे दिन करते हैं, कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जो हमें एकाग्र करते हैं, अच्छे लगते हैं, कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जो अनुभूति नहीं देते, और बाबा कहते हैं सारे ही अभ्यास करो, क्योंकि हरेक अभ्यास, हरेक योगाभ्यास तुम्हें कुछ ना कुछ देगा। तो ऐसे में फिर क्या किया जाए, कई बार लगता है कि ये अनुभूति मुझे क्यों नहीं हो रही है, तो यहाँ इसका रीजन क्या है?
मैं आपको इन चीजों को दो भागों में बांट देता हूं। कुछ अभ्यास हमें करने हैं कि हमारा मन व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहे, केवल ये लक्ष्य बना ले। मान लो आज आपने एक स्वमान ले लिया, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे हूं, ये आपने ले लिए। अब इसको आप सारा दिन केवल याद करेंगे, ये भूल जाओ कुछ समय के लिए कि इनसे हमें अनुभूति होगी। इससे अनुभूति ये होगी कि व्यर्थ का फोर्स खत्म होता जाएगा, व्यर्थ संकल्पों में बहुत ज्यादा स्पीड होती है वो स्लो डाउन होती जाएगी। और आप देखेंगे 15 दिन ये याद करके, ऐसे और कुछ ले लें, 15 दिन को यही नहीं करने, अलग अलग चीजें ले लें, 3-3 दिन के लिए ले लें, 1-1 दिन के लिए ले लें, आपको सुखद फीलिंग होने लगेगी, यानी मजा आएगा ये अभ्यास करके। संकल्प शांत हो गए, एक एक संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, जनरेट होती है, वो हमारे ब्रेन में जाती है, वो हमें सुख देने लगेगी। फिर दूसरी चीज है वो अनुभव, वो अभ्यास आप अलग से ध्यान में लाएं जो आपको सुखद फीलिंग देते हैं। भविष्य का नशा, आप एक अभ्यास ले लें, जैसे ब्रह्मा बाबा भविष्य के नशे में रहते थे, मैं ये शरीर छोड़ ये जाकर बनूंगा, आज भी था, बस ये खेल पूरा हो रहा है, मैं विश्व महाराजन बनने वाला हूं, भविष्य का नशा ले लें। केवल पहले याद करेंगे, हो सकता है आपको कोई भी अनुभूति ना हो, आप केवल याद करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट होता है, मेडिकल स्टूडेंट है, उसको नशा रहने लगा है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं लोगों को सुख दूंगा, लोगों की बीमारियां हरूंगा। अब पहले उसको ज्यादा मजा नहीं आता, उसको केवल संकल्प आते हैं। अब वो सेकंड ईयर में पहुंच गया, थोड़ा बढ़ेगा, अब वो थर्ड ईयर में पहुंच गया, उसकी नॉलेज और बढ़ गई, वो छोटी मोटी ट्रीटमेंट भी करने लगा, उसने किसी को ट्रीटमेंट दी और वो ठीक हो गया, सुख मिलने लगेगा, डॉक्टर होने का नशा चढ़ने लगेगा। फोर्थ ईयर में पहुंचा और अच्छा होगा, फिर आगे और बढ़ेगा, अनुभव होंगे, सुख मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यात्रा आगे बढ़ेगी। ऐसे ही हमें भी करना है, जरूरी नहीं हमें शुरू में ही अनुभव हो जाए। इसके पीछे कई चीजें हैं, किसी को पहले दिन से अनुभव भी शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, मेरा भी यही अनुभव है। रुपेश भाई ने आपको कहा मेरा जन्म ही योग बल से हुआ, आप सोच रहे हो कलयुग में योग बल से जन्म कैसे हो गया, सोचने की बात है। अलौकिक जन्म, ये ब्राह्मण जन्म, बस मुझे एक 8 पेज की छोटी सी किताब मिली थी राजयोग की, उस अनुसार मैंने राजयोग किया, लगा बस यही है, आगे जहाना था, बन गए ब्राह्मण, बाबा के बच्चे। तो किसी को नहीं, बहुतों को अनुभूति पहले क्षण हो जाती है, बहुतों को अनुभव हुआ यही सत्य मार्ग है, हमें देवता बनना है, शराब नॉन वेज दुनिया भर की बुराइयां सिगरेट बीड़ी सब छोड़ दिए, क्षण में छोड़ दिए। कईयों को अनुभव नहीं हुए, सोचते रहे पता नहीं भगवान आता है या नहीं, देर लग गई। तो कईयों को अनुभव एकदम हो जाते हैं, कईयों को देर से होते हैं। आप कुछ बुरा नहीं मानेंगे तो बता दूं, इस ये चीज डिपेंड करती है हमारे पूर्व के कर्म, हमारी धारणाएं कैसी रही हैं। तो अगर हमारे कर्म बहुत श्रेष्ठ रहे हैं, अनुभूति फटाफट, अब आप कहेंगे वो हमारे हाथ में तो नहीं था, वो तो जो भी कर्म थे हो गए, हमें क्या पता था हमें ज्ञान योग करना होगा, हमने तो जो दुनिया कर रही थी वही कर लिया। अब से श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प कर ले, अपनी प्योरिटी की धारणा को मजबूत कर ले, तो अनुभव होने में फिर देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी पांच सात दिन के बाद ही आपको सुंदर होंगे। साथ में एक चीज और है, देखिए जिन्होंने भगवान से भक्ति में बहुत प्यार किया है, देख लें आप अपने को, अंदर जाकर देखें। द्वापर से हमने भक्ति शुरू की थी, भगवान जिनको संगम युग पर बहुत कुछ देकर गए थे, उनके अंदर वो प्यार की फीलिंग इमर्ज हो गई द्वापर आते ही। बाबा ने मुरली में कहा है, आप सुनेंगे, मंदिर भी तुमने ही सब बनाए बड़े बड़े और शास्त्र भी तुमने ही लिखे, क्योंकि ज्ञान हमारे पास तो है। द्वापर में वो इमर्ज हो गया। तो जिन्होंने भगवान को बहुत प्यार किया भक्ति में भी, न जानते हुए भी, उनका प्यार इस समय तुरंत जुड़ जाता है। और प्यार भी हमारे अनुभवों का आधार है। प्यार से हम भगवान को बांध लेते हैं, प्यार से वो हमें वरदान देने लगता है, प्यार से हम उसके बहुत समीप पहुंच जाते हैं। इसलिए ईश्वरीय प्रेम को बढ़ाएंगे दो तरीके। आप कहेंगे जबरदस्ती बढ़ाएं क्या, प्यार ऐसी चीज है जबरदस्ती नहीं बढ़ता। जितने जो देह से न्यारे उतना ही बाबा प्यारा लगेगा और वो भी हमें प्यार करेगा, एक बात। दूसरी बात, जितने हम उसके आज्ञाकारी बनेंगे वो हमें बहुत प्यार करेगा और हमें वो बहुत प्यारा लगेगा। तीसरी बात, उसकी प्राप्तियों को रोज याद करें। एक लिस्ट बना लें आप 15-16 प्राप्तियों की, रोज सवेरे उठ के पढ़ लिया करें, 2 मिनट में सवेरे ही नशा चढ़ जाएगा, बाबा बहुत प्यारा लगेगा। अगली बात, वर्तमान में चिंतन किया करें, बाबा आया है हमें दुखों से छुड़ाने के लिए, बहुत प्यारा लगेगा। वो आया है हमें स्वर्ग की राजाई देने के लिए, बहुत प्यार बढ़ जाएगा उससे। उसने आकर हमें जीवन जीना सिखा दिया, उसने आकर हमारे विघ्न हर लिए, उसने आकर हमारे विचारों को महान बना दिया, उसने आकर हमें निर्भय कर दिया, बाबा बहुत प्यारा लगेगा। तो वर्तमान चिंतन भी और ये सब बातें भी काउंट होंगी और तब हमारा योग बहुत अच्छा हो जाएगा।
बाबा से प्यार भरी बातें सचमुच हमारे योग को बहुत सहज और सरल कर देती हैं। तो हम प्यार को, आपने जो सुंदर विधियां बताई हैं, उनके आधार पे अवश्य बढ़ाते चलेंगे। रते जी, जो बात आपने कही उसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न था कि कभी योग बहुत अच्छा होता है तो कभी मध्यम होता है तो कभी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा क्यों, और क्या करें ताकि हमारा योग एक समान बना रहे? क्या ये होता है कि एक समान ही हो, या कभी बहुत अच्छा होता है कभी नहीं होता, ये सबकी अनुभूति सामान्य रूप से होती है?
देखिए, ये होता है, सबको होता है, लेकिन जब हम बहुत आगे निकल जाते हैं लंबे अभ्यास के बाद, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य के ऊपर दो चीजों का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, हर मनुष्य पर है वो। एक, उसके अपने कोई भी संस्कार, दूसरा कलयुग का प्रभाव। कभी कभी अपना कोई संस्कार इमर्ज हो जाता है, उदास कर देता है, खुश नहीं रहने देता है, मन में अजीब सी परेशानी की फीलिंग रहती है, उखड़ जाता है हमारा मन, तो योग में मजा नहीं आता। कभी कभी कलयुग का प्रभाव, कुछ ऐसा प्रभाव भी होता है जो छुपा हुआ, हिडन इफेक्ट, वो कलयुग के वाइब्रेशंस का इफेक्ट आ रहा है, और कुछ कुछ जो हम खुद क्रिएट कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे, फोन पे ऐसे वैसे सीन देख लिए, गंदगी सुन ली, इसके कारण भी मन पर इफेक्ट आ जाता है। तो कभी कभी ये नहीं होता है। मैं आपको अनुभव सुनाऊं कुछ बहनों के, मेरे पास आते रहते ये अनुभव। एक ने कहा, मेरा योग गुरुवार को और सैटरडे को लगता ही नहीं, बाकी दिन 5 दिन फर्स्ट क्लास लगता है। देखिए, ये इफेक्ट्स होते हैं। एक ने कहा, मेरा योग 5 बजे ही लगता है, उससे पहले नहीं। मैंने कहा, तो तुम उठती हो? कहा, बिल्कुल, मैं 3 बजे भी उठा, चार बजे भी उठी, बहुत मेहनत की कि मेरा योग लगे, नहीं लगता। और जब 5 बजते हैं मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, योग फर्स्ट क्लास लगता है। ये इफेक्ट हैं कुछ चीजों के, इनको स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने उसको सिखा दिया था कि सवेरे उठकर आप सोएंगी तो नहीं, 4 बजे से पहले ही उठकर बाबा से बात करते रहो, बाबा कमरे में बैठ जाओ, कुछ अच्छा चिंतन करो, कोई अच्छी क्लास सुन लो, इस टाइम को गंवाना नहीं है। फिर जब 5 बजे से योग लगे, अच्छा योग लगाना, आपका कोई कुछ भी मिस नहीं होगा। शाम के टाइम बहुतों का अच्छा योग लगता है 6:30 से 7:30, 6 से 7, उसमें कर लेना चाहिए। इसलिए इन चीजों से हार नहीं माननी है, इसको एक नेचुरल चीज समझ लेना है। ये बात सबके साथ होती है, बड़े से छोटे तक, कभी परम आनंद, कभी हल्का आनंद। इफेक्ट होते हैं बहुत चीजों के, कभी फर्स्ट क्लास योग युक्त जीवन तो कभी योग में संघर्ष। कभी ये ही सोचने में मजा नहीं आएगा, मैं आत्मा हूं, हूं तो ठीक है, हूं इसमें क्या हुआ, ऐसा सोचते रहेंगे लोग, मैं आत्मा हूं इसमें कौन सी नई बात हुई, नहीं सुख मिलेगा। इसलिए इन चीजों को एक्सेप्ट करके हार नहीं माननी है, सरेंडर नहीं कर देना है कि हमारा तो योग लगता नहीं, छोड़ दो, आगे बढ़ते रहना है। और आगे बढ़ने वालों को कोई रोक नहीं सकता।
तो यदि योग ना भी लग रहा हो, अनुभूति ना भी हो रही हो, तो भी क्या जो नियम बाबा ने हमें दिए हैं, अमृत वेले उठ के बैठने का, शाम को योग में बैठने का, ट्रैफिक कंट्रोल करने का, रात्रि योग करने का, ये सब लगे ना लगे, लेकिन क्या हम बैठे तो उसका भी
क्या,
इफेक्ट हो?
क्या हम लगे ही रहे तो लगे ना लगे, लगे रहें, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 4 बजे से 4:45 आप बैठे और कुछ भी योग नहीं लगा। फिर तो मनुष्य की नेचुरल मेंटलिटी है ना, वो क्यों उठेगा। इसलिए ये लक्ष्य रख लो, उठकर बाबा के नाम पत्र लिख दो एक। वैसे तो बताते हैं कि रात को लिखो, लेकिन आप सवेरे ही लिख दो बाबा के नाम एक पत्र, मजा आ जाएगा, आपके अंदर चेतनता आ जाएगी और बहुत सुखद फीलिंग रहेगी। बाबा के कमरे में बैठ जाओ, जाके ब्रह्मा बाबा का चित्र है, बात करने लगो, आपने क्या क्या किया, आपने कैसे समर्पण कर दिया, आपके तन में कैसे भगवान आ गए, कितने भाग्यवान हो आप, काश हमारे तन में भी आ जाते। बात करते रहो खुशी खुशी बाबा से और आनंद लेते रहो। और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ट्रैफिक कंट्रोल के समय, कोई अभ्यास चुन लो कि आज मुझे 1 मिनट में ये अभ्यास करना, 3 मिनट में ये करना है, तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। कभी कभी हमारे किसी पास्ट कर्म का इफेक्ट ज्यादा भारी होता है, वो लंबा समय भी चल जाता है, जिसको लोग ग्रहों का इफेक्ट भी बोल देते हैं, है वो कर्मों का इफेक्ट। उस पर हमें विजय पानी होती है और लगे रहेंगे तो पार हो जाएंगे।
दादा जी, प्रश्नों के तो बहुत सारे, एक लंबी कतार है, और योग हम सभी जानते हैं कि रोज ही हमें करना है, तो अनेक प्रकार की छोटी मोटी बातें भी आती हैं, तो बहुत सारी लंबी लाइन है, लेकिन वक्त को देखते हुए गीताबेन मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप भाई बहनों के कुछ प्रश्न आए हों चैट बॉक्स में, तो आप जरूर वो प्रश्न दादाजी के सम्मुख रखें, फिर योगाभ्यास करते हुए आज के सत्र को समयानुसार हम संपन्न करेंगे। गीता बहन,
जी वो प्रश्न एक था कि योग में हम बैठते हैं तो कई बार वृत्ति में, हमारी वृत्ति में कुछ होता है या चित्त में होता है तो योग नहीं लगता। तो हमें वृत्ति, ये चित्त, सबकॉन्शियस माइंड, बड़ा प्रश्न है कैसे क्लीन करें।
बहुत छोटा सा उत्तर है, ज्ञान के चिंतन से और स्वमान के अभ्यास से वो स्वतः ही क्लीन होता जाएगा, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बाबा ने जो हमें ये स्वमान दिए है ना, ये वंडरफुल चीजें हैं, ये हमारी सोई हुई चेतना को जगाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को जगाते हैं, और उसमें जो देव संस्कार भरे हैं, देखिए सोचने का विषय है, ढाई हजार साल हम देवता थे, तो संपूर्ण डिविनिटी, संपूर्ण देवत्व, संपूर्ण प्योरिटी हमारे अंदर है ही, बहुत हिस्सा है उसका। अगर हम स्वमान में रहते हैं तो वो जागृत होता है, वृत्ति शुद्ध होती है, बाकी सब चीजें खत्म होने लगेगा। इसलिए स्वमान और ज्ञान का स्मरण, मैं चिंतन न कह के ज्ञान को याद रखें आप। बहुत सुंदर ज्ञान रोज मुरली से हमें मिलता है, उसको ही थोड़ा थोड़ा याद कर लें। मैं तो कहूंगा आप 5 पॉइंट रोज मुरली से लिख लिया करें और उनको दिन में 5 बार पढ़ लें, 1 मिनट लगेगा, आपकी मेमोरी फ्रेश होती रहेगी और जो बुरी बुरी वृत्तियां अंदर में भरी हुई हैं वो आप एक क्लीन होती रहेंगी।
बहुत अच्छी बात है आपने सुनाई। और जो नेक्स्ट सेशन है अभी हमको पूरा करना है, फिर बताऊंगी। रुपेश भाई को भी जाना है होगा, तो भाई सूर्य भाई आप कमेंट्री कराएंगे?
हाँ करा देते हैं। चलो, सभी योग का अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छा, मैं आपको सुंदर विचार दे रहा हूं और सीख लें आप इसी तरह विचार करते हुए। आपको योग का आनंद लेना है, चित्त को एकाग्र कर देना है। देखें अपने को मस्तक के मध्य में, मैं चमकती हुई सूक्ष्म आत्मा। 10 सेकंड देखें अपने को, मुझसे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं परम पवित्र हूं, एक्सेप्ट करेंगे। पवित्रता की गोल्डन किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, शक्तियों की लाल किरणें मुझसे फैल रही हैं। और इन किरणों से मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर ओरा बन गया है, आभा मंडल। बैठ जाएं इस ओरा के बीच में। इस आभा मंडल के साथ मैं आत्मा उड़ चली अपने परम धाम। ये वही जगह है, इस संसार में आने से पहले जहां हम रहते थे, ये मुक्त अवस्था। मैं अपने इस औरा के साथ यहां विराजमान हूं। शांति धाम की शांति के वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे, चित्त शांत होने लगा। ऊपर देखें, चमक रहे हैं शिव बाबा। अब उन पर बुद्धि स्थिर करेंगे विज्ञान सूर्य। उनका दिव्य तेज चारों ओर फैल रहा है। मैं उनके बहुत समीप हूं। केवल वही दिख रहे हैं। उनकी संपूर्ण शक्तियां मुझ में समा रही हैं। फील करें शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। यहां से मैं आत्मा स्वयं में शक्तियां भरकर नीचे आ गई अपनी भ्रकुटी की कुटिया में। और ये शक्तियां मुझसे दूर दूर तक फैल रही हैं। मैं हूं माइट हाउस। अंग अंग से शक्तियां फैल रही हैं। ओम शांति।
मैं चाहूंगा सभी अपने विंडो ओपन कर लें और एक हाथ की ताली से आदरणीय भ्राता जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया भ्राता जी, बहुत 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 शुक्रिया।